जय राधा माधवा कुंज विहारी जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर जशोदन नंदन ब्रज जनरंजन जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा जमुना तीरा बन सारे जय राधा माधव कुंज बिहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहते श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरिराम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रमानंदे हरि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैतिके। श्रीमद्भागवतम स्कंद अध्याय एक श्लोक संख्या 16। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री पुनाति ही वक्तारं पृच्छकम् स्वत्रुं तत्पाद सलिलं जथा वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनापि वक्तारं पृच्छकं स्वत्रुं तत्पाद सलिलं जथा वासुदेव कथा प्रश्नम् पुरुषां स्त्रीं पुनापि वक्तारं पृच्छकं स्वत्रुं तत्पाद सलिलं वासुदेव कथा प्रश्न पुनाति पुनाति सॉरी पुरुषां स्त्री पुनाति वक्तारं पृच्छकं शत्रुं तत्पाद सलिलं जथा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं पृथकं शत्रुं तत्पाद सलिलं जथा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं पृच्छकं शत्रुं तत्पादं सलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं पृच्छकं शत्रुं तत्पाद सलिलं माताजी। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषास्त्रेण पुनातिः वक्तारं पृथकं शत्रुं तत्पादसलिलं यथा वासुदेव तथा कृष्ण पुरुषास्त्रेण पुनातिः वक्तारं पृथकं शत्रुं तत्पाद सलिलं शब्दार्थ वासुदेव कथा प्रश्न। वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुण विषय में प्रश्न। पुरुषान पुरुषों को त्रीन तीनों पुनाति पवित्र करता है ही निश्चित रूप से वक्तारम सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ताओं को पृच्छकम जिज्ञासु श्रोताओं को जैसे परीक्षित महाराज श्रोत्रुन तथा कथा को सुनाने वाला को तत्पाद सलिलम यथा जिस तरह भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल से संपूर्ण संसार पवित्र हो जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। भगवान विष्णु के चरणों की अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोगों को ऊपर मध्यम तथा अधोलोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव के लीलाओं को तथा गुण के विषय में प्रश्न करता है तो तीनों प्रकार की व्यक्ति वक्ता या उपदेशक प्रश्नकर्ता तथा सुनाने वाले जन सामान्य शुद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में ही 11.3.21 में कहा गया है तस्मा गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो लोग जीवन का लक्ष्य जैसे दिव्य विषय जानना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाए। तस्मा इसलिए गुरु प्रपद्येत आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे गुरु की शरण में जाए जो कृष्ण के विषय में उसे सही सूचना दे सके। यहाँ पर महाराज परीक्षित ने वासुदेव कथा के विषय में जानने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की है। वासुदेव आदि भगवान हैं जिनके अनंत आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं। श्रीमद् भागवतम इन कार्यकलाप का संग्रह है और भगवत गीता वासुदेव द्वारा स्वयं दिए हुए प्रवचन का संग्रह है। क्योंकि कृष्ण भवनामृत आंदोलन वासुदेव कथा से ओतप्रोत है अतः जो भी इसमें शामिल होता है जो भी सुनता है और जो भी प्रचार करता है वो शुद्ध हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तमिरंधस्य ज्ञानांजन सलकाय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगर रघुनाथ नित्वं त्वं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रभजन्तमनुपेत्यमरेत्य कृत्य दैपायन विरहकातराजुहाम पुत्रेति तन्मयतया सर्वाभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानत। जो दशम स्कंती प्रारंभ में अभी सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं को विषय में वर्णन करने के पहले परीक्षित महाराज के द्वारा पूछे गए प्रश्न का अभिवादन करते हुए इस प्रकार कह रहे हैं। जय श्री कौनिकाय की जय श्री राधा श्री धारिचु की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। फतेह राजन अब सभी राजाओं की शिरोमणि है राजर्षि उत्तम। आप क्यों सर्वश्रेष्ठ राजा हैं? क्योंकि आपकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित है, मतलब अच्छी तरह से आपकी बुद्धि स्थिर विचलित नहीं है। क्यों? वासुदेव कथायम जब जाता है नष्ट की रति, उनकी बुद्धि स्थिर है अभिचल है। जिनका रति भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कथा में निमग्न हो गया है, उसमें रति उत्पन्न हो गया है, उसमें स्वाभाविक आकर्षण हो गया है, तो कैसे पता चलता है कि परीक्षित महाराज की भगवान श्री कृष्ण की कथा में रति उत्पन्न हो गया है? कहते उन व्यक्तियों के कुछ लक्षण भी होता है, उस लक्षण को देखकर भी पहचान करना चाहिए कि वास्तविक कौन कृष्ण के प्रेमी है और कौन नास्तिक है। अभी उनकी अंतिम 7 दिन के जीवन की अवधि में 3 दिन बीत चुका है। 4th दिन के प्रारंभ में जब सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन किए कि आपने भगवान श्री राम के विषय में पहले से सुन चुके हैं गुरु वशिष्ठ से, और अभी आप भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के विषय में सुनने के लिए आपके मन में बहुत लालसा है, देवक्या वासुदेवस्य जातजस्य चिकित्सय सकादि ऋषियों ने प्रश्न किए थे 6 प्रश्न में। तो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की गर्भ से जन्म लेकर के क्या क्या किए इस विषय में जानने के लिए प्रश्न किए थे। और इस दशम स्कंद की प्रारंभ होने के पहले जब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी कहते जस्यानन मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कोपल सुभगम सबिलास हास्यम नित्योत्सव न त्रुतुपम दृशिभि पिबंतम नाज्य नरास्य मुदिता कुपिता निश्च। एक का भगवान श्री कृष्ण की सुंदर रूप का एक झलक सुखदेव गोस्वामी को बता दिए कि उनकी कान में मकराकृति कुंडल हिल रहा है और उनकी कान कैसे बहुत सुंदर लग रहा है चारु कर्णम, और उनकी जो सुंदर मुखानन है मुख वो कैसे लग रहा है ना विकसित कमल की पुष्प जैसे हैं। भ्राजत कोपलम सुभगम सबिलास हास्यम, और उसके साथ साथ उनकी जो मंद मुस्कान है वो अतीब आकर्षक है। देखने वाले को जिसकी भगवान के रूप में आकर्षण उत्पन्न हो गया है उनको लगता है कि हमको ये एक उत्सव है। भगवान के रूप के दर्शन कैसे लग रहा है उनको नित्योत्सव, और उस उत्सव में उनको परितृप्ति अनुभव नहीं होता है, बस बस हो गया अलम अलम नहीं नहीं कहते तृप्ति का अनुभव नहीं होता है न त्रुतपुम। और इस अमृत को कैसे आस्वादन कर रहे हैं कहते दृषि भी पिबंत, ये दोनों आंख उन्होंने प्याला बना दिए हैं पात्र बना दिए हैं उसमें भर भर के पीते हैं, जितना देखते हैं और अमृत निकल के आता है। परंतु जब पल्ला गिर जाता है जिस पात्र में उन्होंने उस अमृत को पान कर रहे हैं उस पात्र के ऊपर जब ढक्कन लग जाता है तो कुपित होकर क्रोधित होकर के निमि महाराज को गाली देते हैं। परंतु पीते हैं तो उनको इतनी आनंद की अनुभूति होते हैं तो वो विभोर हो जाती है। किसके बारे में कहा जाता है गोपियां के बारे में। तो ये बात को सुनकर के परीक्षित महाराज ने 7 प्रश्न पूछे कृष्ण और बलराम के विषय में। सुत गोस्वामी पहला स्कंद में सुत गोस्वामी को सनकादि ऋषि ने ये प्रश्न भी किए थे सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। अब भगवान केशव की लीला को वर्णन कीजिए जिनकी बाल बहुत सुंदर है ढूंगराले बाल युक्त, उनकी भाई के साथ बलराम के साथ उन्होंने क्या क्या लीला किए थे। तो परीक्षित महाराज इसी प्रकार प्रश्न किए कि जो भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं अखिल देह भाजम, और उन्होंने अंदर में
सभी जीव को चेतना प्रदान करते हैं और बाहर में काल के रूप में सबकी जीवन के आयु को हरण करते हैं। अंतर वही काल रूपी पुरुष काल रूपी, उनकी जो प्रकट है कैसा है, माया मनुष्य से बदत्व विद्वान। परंतु एक साधारण जैसे एक कलाकार नटा नाट्य धर्म जथा, जो अभिनेता मंच पर प्रदर्श करता है कला, तो अपने रूप को छिपा करके जैसे पेंटिंग होकर के ड्रेसिंग होकर के आता है, तो उसी प्रकार एक सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने ऐसे लीला किए, तो उनकी विषय में मुझे बतलाइए। तो ये होल क्वेश्चन है कृष्ण के विषय में, ये सामूहिक प्रश्न है, फिर एक स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो आप नौवां स्कंद की 26वां अध्याय में सुखदेव गोस्वामी में बताए थे कि बलराम देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी की भी पुत्र हैं। तो ऐसे एक बच्चा कैसे दो मां के गर्भ में एक साथ जा सकता है। रोहिणी सनया प्रस्त राम संकर्षणस्तया देवस्यां गर्भ संबद्ध कुत देहांतर दिन। हाँ ऐसा है, एक देह छोड़ने के बाद फिर दूसरे मां के गर्भ में जा सकता है, परंतु एक ही देह में रह करके कैसे दो मां के गर्भ में प्रवेश किए, ये किसकी बारे में प्रश्न है? बलराम के विषय में। अभी कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। देखा जाए तो 6 प्रश्न है, परंतु चक्रवर्ती पाद 7 प्रश्न के रूप में गिने हैं। पहला प्रश्न है, कस्मान मुकुंद भगवान पितृगेहात ब्रजम गतः। कस्मात, किस कारण से भगवान मुकुंद, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, अपने पिता की गृह से, नंद बाबा की घर से, नहीं सॉरी वसुदेव की घर से ब्रजम गतः, अर्थात नंद बाबा के घर में क्यों आए, क्यों चल गए? अरे तो जब बच्चा जन्म लेता है, बेटा जन्म लेता है, अपने माँ बाप के द्वारा ही पालन पोषित होता है, परंतु इतने पिता के घर को छोड़ करके ब्रज क्यों चल गए, अपने घर में क्यों नहीं रहे, पिता के घर में क्यों नहीं रहे? बड़े होने के बाद कोई नौकरी करने के लिए, धन कमाने के लिए घर छोड़ के जाता है, लेकिन इन्होंने बचपन से ही, जन्म लेते ही उन्होंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, इसका क्या रहस्य है? दूसरा प्रश्न है, को बासम ज्ञान्ति भी सार्धम। ज्ञान्ति भी अपने संबंधियों की साथ, सार्धम साथ, को बासम कहां उन्होंने निवास किए, कौन निवास किए? सातोताम पी कृतवा, जो सभी भक्तों को पालन पोषण करने वाले, अर्थात अपने पिता भी उनकी भक्त हैं, उनको छोड़ दिए, फिर जाकर के उन्होंने ब्रज में रहे, और वहां ब्रजवासियों के साथ कहां रहे, कौन से स्थान में रहे, और कितने साल तक रहे? कितने प्रश्न हुआ? पहला प्रश्न है, अपने पिताजी की घर क्यों छोड़ करके ब्रज गए, और दूसरा प्रश्न, उन श्रुत संबंधियों के साथ कहां और कैसे रहे, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ब्रजे बसन किम अकरोत्, ब्रज में रहते हुए उन्होंने क्या किए, कहां कहां स्पेसिफिक करते हैं, मधुब्रजा च केतव, यहां अलग कर रहे हैं। मधुपुरी का मतलब क्या है? जो मधु राक्षस जहां पर वध हुआ था वो है मथुरा। मथुरा में उन्होंने क्या किए, अर्थात पहला उनकी जन्म हुआ था कहां पर? मथुरा में, लेकिन मथुरा से कहां चल गए? ब्रज गए, फिर ब्रज में लौट करके उन्होंने फिर मथुरा आए, अर्थात ब्रज में कौन सी लीला किए और मथुरा में कौन से लीला किए, ये कौन सा नंबर प्रश्न हुआ? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भ्रातरं च अवधीतं कंस मातुर अद्धात अत अरहणम्। मातुर भ्रातरं, मां की भाई कौन है? मामा, भगवान कृष्ण की मामा कौन है? कंस। जो कहते हैं कि मामा, हम मारने के लिए तो शास्त्र में उपदेश है, लेकिन सुहृद संबंधियों के बद्धक को शास्त्र अनुमोदित नहीं करता है। नरके नियतम वासम भवत इति अनुसुश्रुमा। जो स्वजन संबंधियों को मारता है वो निश्चित रूप से उनकी नरक में बास है। और ये भगवान हो करके ये अपने संबंधी, अपनी खुद माँ के भाई को, मामा को, और क्या ये साक्षात हम अवधितम अद्वात, साक्षात उन्होंने हाथ में मारे, किसके साथ मर्डर नहीं करवाए, वो स्वयं ही उनको हाथ में मारे। ऐसे क्यों? जो शास्त्र का नीति नहीं है, और कैसे भगवान है जो शास्त्र की नीति को उल्लंघन किए? इसका कुछ तो विशेष रहस्य होगा ना। ये कितना नंबर प्रश्न है? चौथा प्रश्न है। फिर पंचमा प्रश्न है, देह मानुष आश्रित कति वर्षाणि वृष्णि भी। तो वृष्णि वंश कहां रहते थे? द्वारका में। ये अभी ब्रज की लीला के विषय में पूछती है। ब्रज में दो भाग हैं, वृंदावन और मथुरा। फिर जो पंचमा प्रश्न पूछते हैं कि वृष्णि वंश जो 13 प्रकार के थे, वृष्णि वंश कितना? अंधक है ना, वृष्णि, सात्वत, ऐसे 13 प्रकार के थे, वो सबको वृष्णि वंश कहा जाता है। तो वृष्णि वंशियों की स्थान उन्होंने कितनी साल तक रहे और कैसे मनुष्य के रूप में लीला किए? मानुषम आश्रितम कति वर्षाणि वृष्णि भी। जतु पूज्यं सह आवत्सित पत्न्या कत्य भवत प्रभु। छठा प्रश्न पूछे कि द्वारका में उन्होंने मनुष्य के रूप में लीला किए और उन्होंने साधारण मनुष्य जैसे शादी विवाह भी किए, और उन्होंने कितने शादी किए थे? देखिए, अभी वो शरीर छोड़ने जा रहे हैं, उनके और 4 दिन समय बचा हुआ है, तो भगवान की गृहस्थ लीला को सुनना चाहते हैं, जो कि उन्होंने राजपाट त्याग करके, अपने ऐश्वर्य संपन्न गृहों को त्याग करके, कौपिनी पहन करके गंगा तट में बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति घर गृहस्थी के विषय में जानकारी करते हैं। आप लोग सोचिए, ये सही प्रश्न है कि गलत प्रश्न है? उनकी मनोभाव को जानने के लिए उस स्तर तक आना पड़ेगा कि साधारण लोगों को जैसे ये गलत फेम होता है कि उन्होंने भगवान होकर के भाई भाई के बीच में लड़ाई लगा दी, ये कैसे भगवान है? भगवान जो होते हैं झूठ थोड़ी बोलते हैं, चोरी थोड़ी करते हैं, और उन्होंने दूसरा स्त्रियों के साथ उन्होंने गलत व्यवहार भी किया, तो लोगों के मन में कई प्रकार के संशय हैं। परंतु श्रीमद् भागवतम को यदि कोई आश्रय लेता है, ये सारे संशय का निवारण हो सकता है। इसलिए भक्त बने बिना कोई श्रीमद् भागवतम की रस को आस्वादन नहीं कर सकता है। सिर्फ बाहर बाहर से जैसे ढक्कन लगा हुआ बटन को हम चाटते हैं बाहर से, उसी प्रकार केवल चाटना पड़ेगा। इसलिए जो प्रश्न उत्तर है, इसके माध्यम से उसके ढक्कन खोलता है, यदि कोई श्रद्धा के साथ उसको श्रवण करे। इसलिए उन्होंने संबोधन करते हैं, मुने हैं, कृष्ण विशिष्टितम एतत्च अन्यम सर्वम। कृष्ण की इसी प्रकार जो लीला है, हमको आश्चर्य में डाल देता है। वो साधारण मनुष्य की भावनाओं को यहां पर प्रस्तावित करते हैं परीक्षित महाराज। वो अपने मनोभावना को व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के साथ और विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हुए थे। यदि सबको महात्मा के रूप में गिना जाता है, क्योंकि जो भी कृष्ण के शरण में आता है तो उसको महात्मा के रूप में गिना जाता है, परंतु उसमें कुछ कर्म मीमांसक कुछ थे आत्म तत्व विचारक। इन सबकी भावना को परीक्षित महाराज पढ़ करके उन भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे सोन जो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि थे, उसी प्रकार परीक्षित महाराज जितना मुनि ऋषियों के सब मंडली जुटा हुआ था उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहे कि ये मुझे आश्चर्य में डाल रहा है कि लोगों की इसी प्रकार शंका है। इसलिए आप कृष्ण की जो अखिल चेष्टा है, आप बचपन से विरक्त हैं, आप भी उसी प्रकार अपने पिताजी का घर भी छोड़ दिए, परंतु कृष्ण लीला की कथा श्रवण करके आप फिर अपने पिता से ये कथा को अध्ययन किए। इसलिए आप उस विषय की रहस्य को सबके सामने प्रस्तुत करिए। और परीक्षित महाराज की कैसी स्थिति है, जिसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धन्यवाद हैरान। आप जैसे राजा सभी राजाओं को शिरोमणि हैं, आपकी बुद्धि अचल है, स्थिर है, क्योंकि आपकी रति वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा में उत्पन्न हो चुकी है। कैसे ना, इस श्लोक से जब परीक्षित महाराज कहें हे मुनि सत्तम, कि जिस कारण से मुझे ये कथा को श्रवण करने के लिए अवसर मिला है, उस कारण था कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी और उस समय मैं एक मुनि के प्रति अपराध किया था, क्योंकि उस प्यास ने ऐसे में बुद्धि को नष्ट कर दिया। समाधि में स्थित मुनि के प्रति मेरी अपराध हुआ, मैं उनकी गले में जाकर की सांप डाल दिया और इस सांप डालने की वजह से मुझे सांप भी मिला कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी शरीर छोड़ जाए तथ्य की दिशा। परंतु अभी 3 दिन बीत गया है, आपकी मुख से भगवान श्री कृष्ण की पावन अमृतमय कथा को सुनते सुनते मेरी उस भूख प्यास पूरा मिट गया है। न एतता दुस्सहाख्यतम तक्त्वा उदमपि पादते, मैं पानी तक भी छोड़ दिया हूं। कहते इसको छोड़ना, भूख प्यास जो दो उर्मी है, सड़ उर्मी से हर व्यक्ति जुगते हैं। पहला उर्मी है शरीर की, क्या है, बुढ़ापा और मृत्यु, उसको कोई नहीं टाल सकता, कितने भी चबन प्रास खा लें, चबन मन को जवानी मिल गया, लेकिन साधारण मनुष्य को जवानी नहीं आ सकता है। कितने भी बाल को आप डाई कर लीजिए सफेद बाल को, लेकिन काल छोड़ने वाला नहीं है, बुढ़ापा छोड़ने वाला नहीं है। ये शरीर के जो दो उर्मी है, बुढ़ापा और मृत्यु, उसको कोई जीत नहीं सकता। और दो उर्मियां क्या है, मन की, क्या है वो, राग और द्वेष, और तीसरा है क्या है, प्राण का है, भूख और प्यास। इच्छा उर्मियों से सब जीव बंधा हुआ है, बद्धक जीव, इसलिए इसको बद्धक आ जाता है। इसलिए कहते दुस्सहा, भूख प्यास को सहन करना बहुत कठिन है। कोई भी रामदेव बाबा का जो कर ले कि कपालभाति करें, श्वास छोड़े, परंतु भूख तो लगता ही नहीं, पानी तो पीना पड़ेगा। दुत्सहा, इसकी जो क्या कहते हैं, मांग है। उदरम उपस्तवेगम, उदर पेट की जो मांग है, भूख और प्यास, नहीं तो इतनी गर्मी छुटता है पेट, मुंह सूख जाएगा। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जिसको सहन करना बहुत कठिन है, परंतु आपकी मुख से तत् मुखाम्बोजम, आपकी मुख कमल से क्या निकल रहा है, अमृतम। किसकी अमृतम? अच्युतम हरि कथामृतम। जो कथामृत को पी लेता है उसको ऐसे खड़ा उर्मी कभी बाधित नहीं करता है। इसलिए कहा है कि तुम्हारे बुद्धि बहुत नैतिक है, कि तुम सही फॉर्मूला को पकड़ लिए हो। जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ने के लिए तुम्हारे बुद्धि बहुत उत्तम है। इसलिए सुत गोस्वामी सौनकादि को कह रहे हैं, इसी प्रकार परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को देख करके सुखदेव गोस्वामी धन्यवाद किए और उन्होंने कथा प्रारंभ करने के पहले इस कथा की महिमा को बतला दिया। इसको कथा श्रवण करने की श्रृंखला है, बस शिष्टाचार है। यदि हम किसी विषय में पूछते हैं, जिसको पूछते हैं नम्रता के साथ पूछना चाहिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। और जिसको हम प्रश्न पूछते हैं तो यदि वो यथार्थ प्रश्न है जो आत्मा को कल्याण करने वाला है, तो वक्ता को चाहिए कि सुनने वाले को धन्यवाद दें। जैसे कि पहले परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते थे, पूछे जब सुखदेव गोस्वामी बैठ गए, ये कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछने के पहले पहला दिन उन्होंने ये प्रश्न पूछे थे कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिनकी मृत्यु अभी अभी है, खासकर के जो मरणासन्न है, म्रियमाणस्य सर्वथा, और हमारी मृत्यु हमारे साथ ही चल रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक प्रचंड शक्ति हमारी शरीर के साथ उस मृत्यु का भी काल का भी ऐसे गति चल रहा है, परंतु उसकी गति को साधारण चक्षु से हम नहीं देख सकते हैं। परंतु जो आत्मवीत है तो वो ही इसको देख सकते हैं कि अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जमालय। केवल दिन पर दिन नहीं, प्रति मुहूर्त ये शरीर ओल्ड हो रहा है, काल के द्वारा चल रहा है। इसलिए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे कि जो अभी मरने वाला है, क्योंकि मृत्यु का ये शरीर की कोई ठिकाना नहीं है, कब छूट जाएगा श्वास इसके कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो लोग अभी मरने जा रहे हैं, खासकर इनकी मृत्यु तो निश्चित हो चुका है, हमारी मृत्यु तो कोई पता नहीं है, उनका तो कम से कम 7 दिन अवधि था। तो मनुष्य यदि अपने ये को ख्याल रखा है तो फिर ये संसार के बंधन से कभी नहीं फंस सकता है। इसको भूलने के कारण हमको सारे प्रकार की विपर्जय और सारे प्रकार की समस्या और दुख की बोझा हमारे सिर पर आ जाता है। यदि हम हर मुहूर्त याद रखें मृत्यु हमारी मस्तक पर मंडरा रहे हैं, तब फिर हमारी बुद्धि ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे मनुष्य की क्या कर्तव्य है, जत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। स्मर्तव्यम भजनीयम जब स्वतव्यम अथो जप्यम जब कर्तव्यम, 6 प्रश्न भी वो पहले पूछे थे। और जो विपरीत है जब विपर्जय उसको भी बतलाई, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जप नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, इसको कहते निषेध। मनुष्य को रेस्ट्रिक्शन को पहले अपनाना चाहिए। करना क्या है, गाड़ी तो चलाना है परंतु रेस्ट्रिक्शन भी है, लाइट को देख करके, जहां पर लाइट रेड लाइट जल रहा है कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न को सुनकर के उन्होंने सुखदेव गोस्वामी कहा कि राजन आपकी प्रश्न बहुत महत्व है, बरियान एक प्रश्न कृत लोक हितं नृप, क्योंकि ये जो प्रश्न है केवल आपकी व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये सामूहिक कल्याण के लिए है, लोक मंगल के लिए है। क्यों ना आपकी प्रश्न को जो बड़े बड़े विद्वान हैं, आत्मज्ञान में निपुण हैं, आत्मविद सम्मत, वो धन्यवाद करते हैं। आत्मविद सम्मत पुंसाम, और ये ही वास्तविक जितने सुनने के विषय हैं, कहते श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रतः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, जिनकी घर में ही स्वेटर हाउस हो गया है, अपने जीवन को ही स्लटरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चर्चा है। अरे उसकी बहू क्या करता है, करती है, उसका बेटा कौन सी नौकरी करता है, बहुत सारी चर्चा होता है लोगों को। जो भक्त नहीं बने हैं तब तो टाइम तक कुछ ना कुछ गुजारते हैं टाइम पास। तो इसी प्रकार अपने जीवन को ही तो मनुष्य जीवन की जो मूल्यवान समय को उन्होंने क्या कर रहे हैं, कसाई खाना की तरह अपने को ही काट रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधि, मेधि का मतलब जहां पर कत्ल किया जाता है कसाई खाना। परंतु आपकी जो प्रश्न है कहते सर्वश्रेष्ठ है, पुंसम श्रोतव्य आदिशु जयपरम, जितने सुनने की विषय है सबसे टॉप क्लास की कथा क्या है, ये भगवान के विषय में। और जो इसी विषय में प्रश्न करता है वो धन्यवाद कर। मुनय साधु पृष्ट अहम भवद्भी लोक मंगलम जपकृत कृष्ण संप्रश्न एनात्मा सुप्त सिद्ध। सुत गोस्वामी भी कहे हे सनकादि ऋषियों, जो आप लोग के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न पूछने से ही आत्मा की कल्याण होता है, आत्मा को आनंद व शांति प्राप्त होता है। बहुत धन्यवाद। और उन्होंने क्या प्रश्न पूछे थे लोक मंगल के लिए, तत्र तत्र अंजसा दुष्मत भवत भी जब विनिश्चितम पुंसा एकाम तक प्रेय। लोग सब प्रेम की दीवाना बन जाते हैं, प्रेय चाहिए थोड़े समय की इंद्रिय तृप्ति, मतवाला हो जाते हैं, परंतु परिणाम को नहीं जानते हैं, इसका परिणाम क्या है। तब जब परीक्षित महाराज इस प्रकार प्रश्न किए, कहे कि आपकी ये प्रश्न का क्या परिणाम होता है, कहते इस प्रकार प्रश्न पूछने से तीन प्रकार लोगों को पवित्रता प्राप्त होती है। जिस प्रकार गंगा जल जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकले हुए हैं, उनकी स्पर्श मात्र से तीन लोक पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथा के समय पूछने से, जिज्ञासा करने से, उनकी विषय में सुनने से और उनकी विषय में बोलने से, सुनाने वाले की तुलनात्मक रूप से देखा जाए कि गंगा नदी स्थान स्थान पर गति करके ही पवित्र करती है। कारण सागर से तो निकली हुई है माता गंगा, परंतु उनकी जो धारा है भगीरथ ने लिखी आयम, प्रार्थना करके, शिव जी की जटा की स्पर्श प्राप्त करके, सागर की पुत्रों को उद्धार करके इन्होंने तीनों लोक को पवित्र करती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की कथा एक स्थान में रह करके भी तीनों प्रकार लोगों को पवित्र करता है। इसलिए कथा की बहुत महत्व है, एक स्थान में उन्हें तीनों लोक को पवित्र कर देता है। ये लोग भी हैं परंतु दूर तक है, वो धारा को लेके जाना पड़ता है। परंतु कृष्ण की कथा एक स्थान में तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। तो किसकी महत्व है? इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, गंगारा परस होइले पाश्चात्य पावन, उसके बाद ही पवित्र होता है। परंतु दर्शने पवित्र करो, उनकी दर्शन, उनकी स्पर्श, उनकी संगड़ाप। इसलिए वक्तारम शब्द है सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता। ये प्रभुपाद श्रीधर स्वामी की टीका को अनुवाद में स्थापित की है। इसे साधारण वक्ता के विषय में नहीं है, कथा तक कहते हैं परंतु पीछे से विटामिन एम चाहिए, उसके बिना उनकी ताकत नहीं आता है कथा कहने के लिए। विटामिन एम के बिना मुख से निकलता नहीं है कथा। एक वक्ता ने इतनी सुंदर कृष्ण कथा प्रस्तुत की है, बंगाल में लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि सभी श्रोताओं की आंख से आंसू आ गया। श्रोता लोग एकदम गदगद हो गया, क्या महाराज जी कथा सुनाए। परंतु एक श्रोता था तो उनने देखा, अरे महाराज आंख से आंसू नहीं आ रहे, क्या बात है, परंतु कथा चल रहा है अभी कैसे पूछे। तो कथा समाप्त होने के बाद गए सब लोग दंडवत लगाए और कहे, महाराज हमारे के जिज्ञासा है, कहीं बताओ इसका क्या बात है। तो थोड़ा संकोच आ रहे पूछने के लिए, क्षमा करे। नहीं नहीं कुछ संकोच की बात नहीं, आप बोलिए बोलिए, खुला खुला बोल सकते हैं। तो महाराज आप जब कथा प्रस्तुत कर रहे थे, अभी श्रोता आपकी कथा में इतनी अनुप्राणित हो गए, सबकी आंख से आंसू की धारा बहने लगा, परंतु महाराज आपकी आंख से एक बूंद भी जल नहीं निकला। तो यही बात है, अरे भाई सातवां दिन तक तो प्रतीक्षा करो, जब दक्षिणा मिलेगा तब तक उसे, अभी मैं रो की सब आंसू निकाल दूं तो उस समय क्या रखूंगा। अर्थात दक्षिणा मिलते समय यदि कमी पड़ जाए तब मैं रो लूंगा, लेकिन अभी आंसू यदि समाप्त हो जाए फिर उस समय कैसे आएगा। तो वक्ताओं को क्या चाहिए? पहले लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तब फिर कथा करते। परंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता वो किसी के आश्रय पर नहीं है। अति तप्त पादम, ये शब्द से ध्यान रखिए कि जैसे माता गंगा श्री विष्णु की चरण के आश्रय लेकर की तीनों लोक को पवित्र करती हैं, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता सिर्फ श्री कृष्ण की दर्शन करने के लिए अपने मां की गर्भ में उन्होंने 16 साल तक रहे, और जो ही भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे बेटा तुम माया में कभी नहीं फंसोगे, निकल जाओ, तुम्हारे लिए मैं प्रस्तुत करके रखा हूं नेक्टर, पी लो और सबको पिलाओ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता ऐसे मुनि ऋषि विरक्त आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ती अहेतुकी भक्ति इत्यम्भुतम गुणे हरि। जो ऐसे हरि के गुण से जिनकी मन रम गया है, और श्रोता भी हो कैसे, परीक्षित महाराज जैसे, उनके पास इतनी सामर्थ्यता थी कि वो श्रृंगी ऋषि के साप को निरस्त कर सकते थे। परंतु उन्होंने इस सांप को उन्होंने भगवान की कृपा समझ करके तुरंत अपने ड्रेस उतार दिए, राजपाट को उतार दिए, मुकुट को रख दिए, सिर्फ एक चिथड़ कौपिन, घर से कोई कौपिन लेके नहीं गए थे, उन्होंने स्मशान में पड़ा हुआ एक कपड़ा को उठा करके गोपनी बांध दिया। तो ऐसे जो दोनों महाभागवतम के बीच में जो कृष्ण के विषय में चर्चा होती है वही वास्तविक रस आस्वादक है। इसलिए स्पेसिफिक प्रभात शब्दार्थ में लिखे हैं परीक्षित महाराज जैसे श्रोताओं को, ऐसे श्रोता होना चाहिए। और फिर पृच्छकम, पूछने वाला। कभी कभी श्रोता ऐसे होते हैं कि तो वक्ता तो बोलते हैं, कहते ना वक्ता तो वही है जो बक देता है, और श्रोता की ध्यान उसी प्रकार वक्ता के चेहरा पर लग जाता है। एक कथा में कहते हैं कि ब्रज में एक महाराज ने कथा कर रहे थे, रामानंदी संत थे, तो जटा दाढ़ी रखे थे। कथा प्रस्तुत करते समय एक बूढ़ी माताएं, तो उनकी ध्यान उस कथाकार बाबा के प्रति एकदम एक चित्त में रहते थे। और जितनी समय तक महाराज ने कथा किए तो माता की आंख से आंसू बहते रहे। सभी श्रोता ध्यान से देखिए, अरे क्या हो गया, ये माँ के आंसू बंद नहीं होती हैं। तो एक ने जाकर के माता से पूछ की कि माँ देखो अभी तो कथा भी समाप्त तो हो गया परंतु आपके आंख से आंसू बंद नहीं हो रहा है, क्या बात है, किसकी ध्यान लग गया है। माता ने बताई क्या करूं, 6 दिन हो गया है हमारे घर से बकरा चल गया, मैं बाबा को जब भी देखती हूं मेरी बकरा की याद आता है, उनकी दाढ़ी के साथ हमारी बकरा भी इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी था। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं तो कौन से रस की आस्वादन करते हैं। कथा किस विषय में हो रहा है और ध्यान किस विषय में। इसलिए श्रोताओं को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, मनोजोग के साथ। सुनतम श्रद्धया निजम गृणं तस्य प्रतिष्ठितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विसते हृदि। यहां तक कि कहा गया है सुनने के लिए केवल इच्छा भी जागृत हो जाता है तो भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सुश्रुत भी तत्क्षणा, केवल सुनने की इच्छा रखें तो लोग कहें तो बस हमारी इच्छा हो गया तो फिर भगवान हमारे हृदय में बंध गए, फिर मंदिर जाना क्या आवश्यक है, यहीं पर हमारी परमार्थ प्राप्त हो गया। तो नहीं, परमार्थ के साथ पुरुषार्थ भी चाहिए। जदियो माता जसोदा जानती थी कि ये भगवान है, गर्गाचार्य ने बता दिए थे नंद बाबा, फिर भी उन्होंने उनको प्रयास करना पड़ा कि कृष्ण को अपना हृदय में बांधने के लिए, रस्सी जुटाई ना है, ये पुत्र के रूप में प्रकट भी हो गए और उन्होंने वहां छोड़ के आ गए, मथुरा छोड़कर के नंद गोकुल आ गए। इतनी बात्सल्यता से भरी हुई थी माता जसोदा, जो कृष्ण को भी जल दिए बांध करके। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण रूपा आसीत् स्वबंधने। इसलिए पुरुषार्थ और परमार्थ, प्रयास और भगवान की कृपा प्रार्थना, ये दोनों आवश्यक। इसलिए वक्ता और श्रोता के संजोग होता है उनकी मेडिटेशन है कि जिज्ञासा। और यहां श्रोतृन बहुवचन में है, ऐसा एक वक्ता पूछ सकता है, परंतु सुनने वाला अनादि, पूछने वाला एक हो सकता है और बोलने वाला एक हो सकता है, परंतु सुनने वाला तो अनेक है। तो यदि यहां पर श्रोत्रम शब्द हो जाता है तो एक वचन में कहते हैं जो पूछा है तो वो सुनने पर उनकी कल्याण होता है, कहते हैं नहीं। भागीरथ जैसे एक व्यक्ति, उन्होंने माता गंगा, वो भी एक पर्सनैलिटी है, उनको लेके आए, परंतु कितने लोग की कल्याण हो रहा है, जो भी जाकर के हरिद्वार में डुबकी लगाता है उसके कल्याण है। तो उसी प्रकार भगवान की कथा को कोई एक पूछ सकता है और एक बोल सकता है, परंतु सुनने वाला सबकी मंगल होता है। इसलिए कहा गया है तत्पादम सलिलम यथा, भगवान की सारे अंग सब प्रकार से समान है, अंगानी जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमति, सभी में सभी गुण एक समान है, परंतु विशेष उनकी चरणामृत और उनकी कथामृत में एक विशेष अंतर भी है। जैसे विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है, परंतु एक विशेष अंतर है रस रसिकों के द्वारा। क्यों कहते भगवान श्री कृष्ण में जो माधुरी है वो माधुरी भगवान विष्णु में नहीं है, उसी प्रकार भगवान की भगवान श्री कृष्ण की कथा में जो अमृतता भरी हुई है, जो हम डायरेक्ट रिलीज कर सकते हैं, वो अमृत चरणामृत में यदि है, लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए वो समय लगेगा। श्रीमद् भागवतम में कहते पिबंतम तत् मुखाम्बुजम, पिबंतम ये दूसरा स्कंद की चौथा अध्याय में अंतिम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रजंती ते चरणासरोरुहम, कहते कमल पानी के अंदर तो रहता है ठीक है, परंतु उसकी पोषण कौन करता है, कौन, सूरज की रोशनी। वो कली बना सकता है पानी, कमल का कढ़ी बना सकता है, परंतु उसकी पंखुड़ी को खोल नहीं सकता है। कमल की पंखुड़ा तब खोलता है जब सूरज की रोशनी पड़ता है। तो उसी प्रकार ये सभी में सामर्थ्य है, भगवान के धाम में, भगवान की गुण में, भगवान की परिकर में, सब में है, परंतु उनकी कथा में जितनी शक्ति है, हाँ, ये सभी शक्ति फूल का अंदर वही शक्ति है जो शोभा को खोल सकता है, परंतु सूर्य के जब तक स्पर्श नहीं होता है तभी उनकी शोभा प्रकाशित नहीं होता है। गुण रूप लीला सब में वही शक्ति है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, परंतु उनकी जो कथा है ये सारी सारी समूह को विकसित करता है। इसलिए कहा जाता है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम, सदियों का ये जीवन है, जितनी सारी विद्या है ज्ञान है उस ज्ञान का भी जीवन है भगवान के नाम व भगवान की कथा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस कथा को श्रवण करने के लिए तस्मात गुरु प्रपत्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सप्त परिस निष्णातम, शरण ग्रहण करके निष्णात होना चाहिए, इसको हृदय से लेना चाहिए। पहले तो प्रपत्ति चाहिए, यदि शरणागत नहीं है तो शब्द कभी हृदय में उतरता नहीं है, इस कान में घुसेगा फिर इस कान से निकल जाएगा। यदि कथा के प्रति प्रपत्ति नहीं है तो बूढ़ी माता की तरह चिंतन बकरा क्या होगा, कृष्ण की नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे गुरु की शरण में जाए जो कृष्ण की दिशा में उसे सही सूचना दे सके। यहाँ पर महाराज परीक्षित उदाहरण दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने भगवान की विषय में जानने के लिए जिज्ञासा रखे थे। तो बहुत सारी विषय जब मन में प्रवेश करता है पर भ्रमित हो जाता है मनुष्य, इसलिए एक कुरुनंदन व्यवसायी आत्मिक बुद्धि एक कुरुनंदन बहु शाखा ही अनंतस्य बुद्धय अव्यवसायी। यदि बुद्धि को नैष्टिक बनाना चाहते हैं तो श्री भगवान की विषय में ही सुनना चाहिए। प्रतव्यम कृतव्यम ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, उनकी विषय में ही प्रश्न करना चाहिए और उनकी विषय में चर्चा करके उसमें ही रमना चाहिए। सुष्यंती च रमंती, तब वास्तविक हमारी भक्ति जीवन का पूर्णता व सफलता उसी में ही है। यदि हम अपने जीवन को हम कृष्ण सेंट्रलाइजेशन कर लेते हैं, कृष्णलाइजेशन, इसलिए प्रचार की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम बोलने के लिए माइक्रोफोन का केवल सहारा लें, उस समय हमारा ताकत निकले। जहां भी हो हमारा वाणी जहां तक चलता है हम मैडम की तरह टर्टर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस जीवा के साथ हम इस कृष्ण को जोड़ दें जो काल की गति को रोक देता है। अस्त नहीं होता है, कृष्ण रूपी सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये सूर्य तो संध्या के समय दूसरा दिग्विजय में चल जाते हैं, परंतु कृष्ण कथा रूपी जो सूर्य है प्रकाश, उनके कभी अंधकार नहीं आता है। कृष्ण है सूर्य सम, सूर्य के पास कभी अंधकार नहीं रह सकता। तो इस कथा को जो आश्रय कर लेता है वो कहे कि बहुत बड़े बड़े वीर ये संसार को विजय करने के लिए निकल पड़े, परंतु आपकी माया शक्ति स्त्री के पास अपने मुकुट उतार करके रख दिए और स्वामिनी के चरण में शरण ले लिए। सब बड़े बड़े वीर, परंतु जो आपकी कथा को आश्रय कर लेता है तो काल की सिर पर पैर रख करके आपकी धाम को चल जाता है, जैसे ध्रुव महाराज आपकी कथा के आश्रय करके उन्होंने काल की गति को भी रोक दिए और उनको वो सोपान बना दिए, सीढ़ी बना दिए और उस काल की पर पैर रख करके भगवान के द्वारा भेजी गई जो वैकुंठ लोक से आया था विमान उस पर बैठ। इसी प्रकार कथा को आश्रय लेने से हम वैकुंठ लोक की विमान में बैठने के लिए हमको टिकट मिल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसकी कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कौनिकाय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा गिरिधारी देव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा।